أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ الحمد اور سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کے تعارف اور ان کے فضائل اور ان کی برکات پچھلی نشستوں میں بیان ہوئی. قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تیسرے سورے کا تعارف اور اس کے فضائل پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی. دیکھیے, سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے, تقریباً ڈیڑھ پارے کے برابر ہے, اور اس قدر عظمت ہے سورے کی کہ تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جو شخص بھی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا خدا اس کی ہر آیت کے بدلے کھلے صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا کرے گا. ہر آیت کے بدلے کھلے صراط سے گزرنے کا پروانہ اس کو نصیب ہوگا. تو بہت اہم اور بہت ہی بافضیلت سورہ ہے. اچھا, پہلے اس کے تعارف میں ایک بات بیان ہو جائے کہ اس کا نام سورہ آل عمران کیوں ہے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. تو دیکھیے, اس آیت یہ جو سورہ ہے اس سورہ کی 32 آیت کے بعد سے آل عمران کا تذکرہ آیا ہے اس کے اندر. ابھی آل عمران کون ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوگی, یہ بھی آگے چل کر بات آئے گی. تو اس سورے میں کیونکہ آل عمران کا تذکرہ ہے اس لحاظ سے اس کو سورہ آل عمران کہا گیا. اچھا, نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 88واں یا 89واں سورہ ہے, 88 یا 89, لیکن موجودہ جو پرانی ترتیب ہے جسے پیغمبر اسلام خود ترتیب دے کر گئے تھے اس ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر تیسرا ہے. اچھا, یہ دماغ میں رہے کہ بعض اوقات یہ نزولی ترتیب والے جو مسائل, یہ کوئی بالکل اجماعی مسئلے نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں, سورے کا نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ نمبر ہے اور کسی جگہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے. زیادہ تر انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو ایک ترتیب لکھی گئی ہے وہ آیت اللہ ہادی معرفت جو ہیں انہوں نے جو ترتیب لکھی وہ تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ خود اس کے اندر بھی مفسرین کے اختلافات ہیں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ کون سا ہے. تو ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن جو موجودہ جو ترتیب ہے یعنی نزولی ترتیب کے اندر اختلافات ہیں, لیکن جو موجودہ ترتیب جو قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر تیسرا ہی ہے, اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں. اچھا, اب آتا ہے کہ آل عمران سے کیا کون لوگ مراد ہیں. دیکھیے, عمران نام کے تاریخ میں تین گزرے, ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد گرامی, وہ بھی ان کا نام بھی عمران ہے. دوسرے حضرت مریم سلام اللہ علیہ, ان کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا. اور تیسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام, ان کا نام بھی عمران تھا. اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں ان کا رجحان یہاں پر آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد گرامی کی طرف ہے, لیکن تفسیر امدد البیان میں آل عمران سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے. اور تفسیر انوار النجف میں ایک روایت بھی اس موضوع پر ہے حضرت ابن عباس کی کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ آل ابراہیم سے مراد میں ہوں, میں آل ابراہیم ہوں, اور علی آل عمران. اچھا, آل عمران دیکھیے اس میں اصطفیٰ کا لفظ آیا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران علی العالمین. تو اس میں ہم نے چن لیا عالمین میں سے آل عمران کو, یعنی آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو. تو بعض علماء نے تفسیر میں بات بھی بیان کی ہے کہ یہ غیر معصوم کے لیے ممکن نہیں کہ ان کو عالمین کے لیے چنا جائے, کیونکہ دیکھیے فرشتے بھی عالمین میں شامل ہیں اور آل عمران فرشتوں سے بھی افضل. تو لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر معصوم پر اس کا اطلاق مشکل. تو بہرحال یہ تین نام گزرے ہیں, عمران نام کے تین افراد گزرے ہیں, ان میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد تھے, حضرت مریم کے والد تھے, اور حضرت امیر المومنین کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے. تو تفاسیر میں اختلاف ہے کہ آل عمران سے کون مراد ہے. بہت سی تفاسیر کے اندر حضرت امیر اور عمران سے مراد رجحان ظاہر کیا گیا کہ حضرت ابو طالب تھے. اچھا, اب سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے, اس سورہ میں 80 سے زائد آیات نجران کے عیسائیوں کے وفد کے بارے میں, یعنی جنہیں اسلام کی تحقیق کے لیے عیسائیوں نے بہت سارے افراد کو چنا تھا. تقریباً 60 افراد تھے کہ جن کو چنا گیا تھا, اور یہ پیغمبر اسلام کی طرف باقاعدہ وفد کے طور پر بھیجے گئے تھے. اچھا, یہ جو 60 افراد تھے, ان میں 14 افراد تو وہ تھے جو نجران کی ایلیٹ کلاس سے جن کا تعلق تھا, بہت اشرافی ہے جسے کہا جاتا ہے, اور ان میں بھی ان 14 میں سے 3 تو سردار تھے. ایک سردار عاقب نام کا تھا جس کو عبد المسیح کے نام سے بھی پکارا گیا ہے, اور ایک دوسرا سید یا اہم نام تھا اس کا, اور تیسرا ایک اور شخص تھا کہ جو کہ عیسائیوں کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کا بہت بڑا عالم اور حافظ تھا, ابو حارثہ اس کا نام آیا روایت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا مناظرہ ہوا تھا. اچھا, یہ جو آپ یاد رہے کہ یہ جو موبائلے کے موقع پر یہ جو عیسائی آئے تھے موبائلے کے لیے, اس سے پہلے کئی بار مناظرے پیغمبر کے ساتھ ہو چکے تھے. تو اور اسی مناظرے سے پہلے کے حوالے سے, یعنی 80 سے تقریباً 80 سے زائد آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. تو مناظرے سے پہلے, یہ موبائلے سے پہلے بہت سارے مناظرے ہوئے. تو شان نزول اس اعتبار سے ہے, یعنی اس سورے کی آیات کا, کہ نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا, جس میں اتنے سارے یہ افراد تھے اور بڑے ان کے عالم بھی تھے, ان کے پیغمبر سے مناظرے ہو رہے تھے, اور اس زمن میں یہ ساری آیات جو ہے وہ نازل ہوئی. اچھا, اس کے فضائل ابھی ہم آگے چل کر تو اور ذکر کریں گے. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو فضیلتوں کے اعتبار سے تو بہت ایسی جسمانی طور پر جو انسان کو عارض لاحق ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی سورہ آل عمران جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. مثلا حمل گرنے سے حفاظت, بہت ساری خواتین بھی پوچھتی ہیں. پیغمبر گرامی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے, تفسیر برہان میں بھی ہے روایت یہ, کہ اگر سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکایا جائے. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ زعفران کا لفظ آ رہا ہے, اور یہ بہت سارے عملیات میں اور بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کس چیز سے لکھا جائے. تو جیسے کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ زعفران سے کیوں لکھا جاتا ہے, اور اس متعلق ایک الگ سے گفتگو کرنی پڑے گی, اس کے ذمن میں اس کو کرنا مشکل ہے, وہ خود ایک مستقل عنوان ہے. تو اگر سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکایا جائے جس کا حمل گر جایا کرتا ہو, یہ خطرہ ہو کہ کہیں گر نہ جائے, تھریٹنڈ ابارشن, تو خدا اس کے حمل کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے. یعنی اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایسی خواتین یہ لکھ کے رکھنا چاہیے اس کو, بہتر یہ. لوگ اکثر اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو فوٹو کاپی نہ کرا لیں. تو دیکھیے, یہ لیزی جو اپروچ ہے اس کو ایک طرف کرنا چاہیے, اور وضو کر کے, اور وضو کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے ہاتھ سے لکھے تو اس کی اثر پذیری زیادہ ہوگی. کوئی بالکل خود ہی نہ لکھ سکے تو کسی جو ہیں اس سے لکھوا لے, لیکن بہتر ہے کہ عورت خود لکھے, اور زیر زبر پیش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں, اور اچھے طریقے سے دیکھ کر اس کو لکھے, اور اس کے بعد عورت اپنے گلے میں اس کو تعویذ کے طور پہ پہن لے تو اس کا حمل گرنے سے محفوظ رہے گا, اور اللہ اس کو اس بچے کو بالکل صحیح و سالم پیدا کرے گا. اچھا, اسی لحاظ سے جس طریقے سے کہ حمل ضائع ہونے سے محفوظ ہوتا ہے، کسانوں اور کاشتکاروں کے لحاظ سے بھی ایک عمل ہے، جو کہ اسی تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے اور تفسیر برہان میں بھی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کسی کھجور یا درخت کا پھل گر جایا کرتا ہو، مثلا انسان چاہے کہ بھئی میرے پھل ضائع ہو رہے ہیں، کاشتکار سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پھل گر جاتے ہیں، اتنے ضائع ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر کھجور کا یا کسی درخت کا پھل گر جاتا ہو تو سورہ آل عمران کو لکھ کر اس درخت پر لٹکانے سے اس کا پھل گرنے سے محفوظ رہے گا۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، معاشرے کے اندر کہیں رائج نہیں ہے، نہ کسانوں کاشتکاروں کے عمل پتہ ہوتا ہے، نہ حاملہ عورتیں جو وہ اس کو ایکسپیرینس کرتی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر۔ تو ابھی دیکھیے کہ اسے مکمل اعتقاد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہر وقت شکوک و شبہات کے اندھیروں کے اندر انسان بھٹکتا رہے تو پھر اس کے اثر پذیری بھی نہیں چیزوں کی ہوتی۔ جیسے کہ ابھی پچھلی دفعہ ہماری نشست ہوئی تھی آیت الکرسی کے کچھ عملیات کے سلسلے میں، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز ہمیں شیئر کیے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں شدید درد تھا، آیت الکرسی کا جو عمل اس میں بتایا گیا تھا انہوں نے اس کو کیا، تو صرف وقتی طور پر ہی نہیں بلکہ سرے سے ہی ان کے پاؤں کا درد غائب ہو گیا۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اعتقاد کے ساتھ کرنی چاہیے، روایات میں چیز آئی ہے اور امید ہے کہ پیغمبر اکرم یا آئمہ اطہار نے کہا ہو تو اس پہ عمل کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ ہمیں یقین اور اطمینان ہے کہ ان چیزوں کے جو ہے وہ مثبت اثرات ہوتی۔ اچھا، تیسرے اور چوتھے پارے میں یہ مدنی سورہ ہے، سورہ آل عمران، اس کا یہ تیسرے پارے میں بھی ہے اور کچھ حصہ اس کا چوتھے پارے میں بھی ہے، اور 200 کے قریب اس کی آیات ہیں اور 14,984 حروف ہیں اس کے اندر، 14,984 حروف۔ دیکھیں ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص سورہ آل عمران پڑھ لے تو 15,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائیں گی اور اس کا پلڑا نیک اعمال کا بھاری سے بھاری ہوتا جائے گا۔ تو اس کو اپنی ہم عام طور پر پریکٹس میں یہ آتا ہے لوگوں کے، لوگ چھوٹے سورہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو بڑے سورہ ہیں ان کا کوئی کبھی نمبر ہی نہیں آ پاتا، کبھی رمضان میں قرآن ختم کریں تو ایک دفعہ پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن ان کو بھی جب آپ ان کے آگے فضائل سنیں گے تو دل چاہے گا کہ ان بڑے سوروں کو بھی چاہے اتنی فریکوینسی کے ساتھ روزانہ نہ پڑھا جا سکے لیکن کم سے کم ہفتے، 15 دن، 1 مہینے کے اندر تو ان کو بھی پڑھ کر ان کے بھی فوائد لینے چاہیے۔ اچھا دیکھیے، حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں ان میں یہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلا تو وہی ہے سورہ بقرہ، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ تو لیکن حروف مقطعات کے ادوار سے جو سورہ شروع ہو رہے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر۔ اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے بعد یہ تیسرا بڑا سورہ ہے، تیسرا بڑا سورہ، تقریباً 1.5 پارے کے برابر یہ سورہ، اور قرآن میں جو 7 طویل سورے ہیں جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 طویل سورے، جو 7 طویل سورے ہیں ان میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ آراف ہے اور سورہ یونس ہے۔ تو یہ 7 سورے ہیں، اس میں یہ جو اپنے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تیسرا بڑا سورہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جو مشترکہ نام ہے وہ الزہراوان ہے، الزہراوان۔ الزہراوان کہتے ہیں بہت زیادہ چمکدار شے کو، بہت زیادہ گلٹرنگ، یعنی قرآن کا جو سب سے زیادہ چمکدار حصہ ہے یہ 2 سورے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور پیغمبر اسلام قدوی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ تم الزہراوین پڑھا کرو، اور اس سے مراد ان کی یہی سورہ ہوتی تھی۔ سورہ بقرہ کو بھی اس لحاظ سے کہا جاتا ہے اور سورہ آل عمران کو مشترکہ طور پر کہا جاتا ہے۔ अच्छा, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के मजामीन का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, और सूरह बकरा है कि मजामीन आगे बढ़कर सूरह आले इमरान में आए। और शरफ व फजीलत के एतबार से अगर हम देखें तो कुरान के अंदर शरफ व फजीलत की वजह से, यानी देखिए कि जिस चीज की शरफ व फजीलत जितनी ज्यादा होती है उतने ही ज्यादा उसके नाम भी हुआ करते हैं। मसलन इसका एक नाम है अल किंज, खजाने को कहा जाता। इसका एक नाम अल अमन भी है, या नाम अमन व सलामती। इसके अलावा इसका एक नाम अल मुइना है, मददगार। इसका एक नाम अल मुजादिला है, यानी इल्तिजा। इसका एक नाम अल इस्तिगफार है, यानी बख्शिश। इसका एक नाम अत तैबा है, यानी पाको पाकीजा। अच्छा, जो इसकी आयात का नुजूल हुआ है सूरह आल इमरान का, इसका भी एक मकसद है। अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबतबाई ने तफसीर अल मीज़ान के अंदर ये बात लिखी कि इस सूरह के नुजूल का मकसद इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद और सब्र इस्तकामत की दावत देना। जो कि इस अगर इस पूरे सूरह का मुताला करें तो उसके अंदर ये वाला पैगाम मिलता है। अच्छा, इस सूरह के अंदर जो वाकयात हैं, बहुत सारी दास्तानें हैं, वो भी आपके दिमाग में हो कि सूरह कितना अहम है। कि इसमें एक तो हजरत मरियम और हजरत ईसा के वाकयात हैं, और इसी तरीके से आयत मुबाहिला वो इसी सूरह के अंदर है आले इमरान में। फकुल फमन हाज काफी फकुल तो आयत मुबाहिला इसके अंदर, इसके अंदर। इसके अलावा जंगे ओहद और जंगे बदर के बहुत से वाकयात इसके अंदर हैं। इसके अलावा एक आयत है जिसे आयत मोहकम व मुतशाबे कहा जाता है, जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 है। आयत नंबर 7, हुवल्लज़ी अंजला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबे व उखरु मुतशाबिहात। यानी उसने आप पर वो किताब नाजिल की है कि इसकी कुछ आयतें मोहकम हैं और वही असली किताब है, और कुछ आयात मुतशाबे हैं। तो जिनके दिल में कजी होती है मुतशाबे के पीछे लग जाते हैं ताकि फितना बर्पा करें और उसकी मनमानी तावीलात करते हैं, जो पूरी आयत है। इसके अंदर ये बहुत मशहूर आयत है, इसे आयत मोहकम व मुतशाबे कहा जाता है। आयत नंबर 7 एबीसी के अंदर आई। आप देखते हैं माशरे के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी बल्कि तमाम जितने भी बातिल फिरके भी हैं, वो भी अपने आप की हक्कानियत इसी से साबित करते हैं, और मुतशाबे आयत से बहुत सी चीजें लाकर उसके मनमानी तावीलात करते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम आयत है, और इसकी एक मशहूर आयत है सूरह आले इमरान की। इसी तरीके से अभी जैसे जिक्र हुआ आयत मुबाहिला 61 नंबर की आयत है, और ये बात हमारे इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते थे आयत मुबाहिला के मुताल्लिक। उनके नजदीक मौला अली की कुरान में जो सबसे बड़ी फजीलत है कुरान, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते थे, वो है आयत मुबाहिला, जिसमें उनको नफ्स रसूल करार दिया गया। अनफुसना व अनफुसकुम, इसमें हजरत अमीर मुराद हैं। कहा कि सबसे बड़ी फजीलत है नफ्स रसूल होने, कुरान के अंदर इससे बढ़कर मौला अली की कोई फजीलत बयान नहीं। ये हमारे 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का नजरिया था, यानी वो ये बात समझते थे। इसी तरीके से एक बहुत मशहूर आयत इसमें आयत इन्फाक है, जो 92 नंबर की आयत है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, यानी तुम नेकी तक उस वक्त तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि तुम राह खुदा उस चीज को ना दे दो जिससे तुम बहुत शदीद मोहब्बत करते हो। ये बहुत जबरदस्त आयत है, हर जगह इस आयत को जो है वो पेश किया जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में रहे कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, जिसे आयत इन्फाक कहा जाता है, वो भी इसी सूरह आले इमरान में। इसी तरीके से एक आयत एहतिसाम है, या आयत वहदत भी इसको कहते हैं, ये आयत नंबर 103 है। देखिए अभी हम सिर्फ उसको जिक्र कर रहे हैं कि इसका एक तारुफ हो जाए कि इसमें कौन कौन सी अहम तरीन आयतें हैं जो आपको तकरीबन हर शख्स को जुबानी भी याद होती हैं, लेकिन वो सब सूरह आले इमरान के ज़िल में आती हैं। जो वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू, ये आयत एहतिसाम कहलाती है, ये आयत वहदत कहलाती है। اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور پھر آپ مجالس کے اندر جیسے سنتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے, تو یہ اس سورے کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے آیت مغفرت ہے جو آیت نمبر 133 ہے, وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے پروردگار اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے, اور یہ ان صاحبان تقویٰ کے لیے مہیا کی گئی. یہ بہت مشہور آیت ہے اس کی, اس کو آیت مغفرت کہا جاتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ. تو یہ بہت مشہور آیت ہے اس کی. اس کے علاوہ ایک آیت کظم غیظ, یہ آیت نمبر 134 ہے. اچھا, اس سے پہلے آیت مغفرت آیت 133 تھی, اس کے فوراً بعد کی آیت 134 ہے جسے آیت کظم غیظ کہا جاتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو ان افراد کی بہت تعریف کی گئی جو راحت و سختی میں کی حالت میں بھی انفاق کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اور خدا ان احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ اسی سورے کی آیت ہے, آیت کظم غیظ. اور یہ اتنی اہم آیت ہے, یہ اس کو باقاعدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر لگانا چاہیے. ہر وقت انشاءاللہ جب ہماری اس سلسلے میں ایک گفتگو آئے گی غصے پر قابو پانے کے طریقے, جو کچھ ہی دن کے اندر اس موضوع پر مفصل گفتگو آنے والی ہے, اور اس میں بہت سے عملی اقدامات بتائے جائیں گے کہ انسان کیسے اپنے غصے کے اوپر قابو پائے, تو اس کے اندر یہ آیت کی مزید تفصیل آئے گی اور اس کے اپلیکیشن جو ہیں اس آیت کے جو ہے اس میں بیان ہوں گے. تو اس آیت کو خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسی سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت کظم غیظ کہلاتی. اچھا, دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں مختلف سینریز لگائی جاتی ہیں ڈرائنگ روم میں, لیکن اس طرح کی قرآنی آیات جو خوبصورتی کے اعتبار سے بھی, ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے بھی کمرے کی کو خوبصورت بنائیں گی اور ہر آنے جانے والے کی نگاہ پڑے گی, قرآنی نصیحتوں کی طرف لوگوں کا دماغ جائے گا, تو بہرحال اس کو لگانا چاہیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عالم یعلم بان اللہ یرا, بہت سے لوگ لگاتے ہیں قرآن کی آیت کہ ابھی تک تم نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس آیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہے شہید کے زندہ ہونے والی آیت, یہ آیت نمبر 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی تم جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم ان کو مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے. یہ خود سورہ آل عمران کی آیت ہے, مشہور ترین آیات کے اندر سے, اور غالباً یا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روزے میں یا حضرت عباس علیہ السلام کے 2017 میں جب ذریعہ مقدس تبدیل ہوئی تھی تو دیگر آیات کے ساتھ یہ والی آیت بھی ذریعہ کے اوپر کندہ کی گئی تھی. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دماغ میں اگر آگے کہیں آیت سنیں تو آپ کے فوراً ریکال ہو جائے کہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. اچھا, اسی طرح سے فقہ احکام کی بہت ساری آیات ہیں اس کے اندر, جو کہ ہم ظاہر ہے اس کو بیان نہیں کریں گے. طہارت و نجاست سے متعلق بھی ہیں اس کے اندر, اور امر و نہی سے متعلق بھی ہیں, کچھ نظر و عہد سے متعلق بھی ہیں, حدود سے متعلق بھی ہیں, بہت ساری فقہ احکام کی آیات بھی اسی کے اندر موجود ہیں. اچھا, اسی طرح سے اگر روز جمعہ, اس میں شب جمعہ لیکن اصل میں روایت جمعہ کے متعلق آئی کہ روز جمعہ سورہ آل عمران کی جو تلاوت کا ثواب بتایا گیا. اچھا, دیکھیے اتنے سارے اعمال جو ہے بیان پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اب بھی بیان ہوں گے, آئندہ بھی بیان ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں پہ ہم عمل کیسے کریں. एक जमाने में हमारा इरादा था कि कैलेंडर इस तरह का बनाए कि ये जो मुख्तलिफ अमाल बयान की गई जाहिर सब के सब एक दिन में होने मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना साल के दिनों के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, आप कैलेंडर हो अच्छा आज मुझे ये करना है आज ये करना है ताकि और वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सोचा गया था। लेकिन कुछ ऐसी यकीनन अमाल रहे होंगे हमारे कि इसकी तौफीक नहीं मिल सकी, लेकिन ये कि परवरदिगार आलम से दुआ है किस तरह की कोई चीज़ हो जाए। तो हर शख्स अपने तौर पर भी वैसे मेंटेन कर सकता है, कैलेंडर टाइप का बना ले, अपनी डायरी के अंदर नोट कर ले कि भाई फला तारीख को मैं ये वाला अमल करूंगा फला तारीख, तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साल के दिनों में। तो जितने भी अमाल इस लिहाज से अगर डिवाइड करके साल में कर लिए जाए तो बहुत अच्छा। तो तफसीर मजमूल बयान में जो अल्लामा तबरसी हैं उन्होंने एक रिवायत लिखी है कि जो भी जुमे के रोज सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा तो सूरज गुरूब होने तक खुदा और फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहेंगे। अच्छा, अल्लाह का दुरूद आपको इल्म में सबके जाहिर है कि बात होनी चाहिए कि अल्लाह के दुरूद भेजने का मकसद नुज़ूल रहमत है, तो यानी खुदा और उसका उसके फरिश्ते इस शख्स के ऊपर दुरूद भेजते रहेंगे, यानी मुसलसल रहमत परवरदिगार नाजिल होते रहेगी, फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फार करते रहेंगे यहाँ तक के सूरज जुमे का गुरूब हो जाए। यानी कितना अजमत वाला है कि एक जुमा हम सूरह आले इमरान के लिए भी, और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 200 के करीब आयात हैं और इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता है इसको पढ़ने में। फिर एक रिवायत में ये भी कि सूरह आले इमरान कयामत के दिन साहिबान बन जाएगी, यानी कयामत के दिन जब कुरान और उसकी तिलावत करने वालों को बुलाया जाएगा तो आगे आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होगी और सूरह आले इमरान साहिबान की तरह से साया किए हुए होगी। तो न सिर्फ इस दुनिया के अंदर इसके फवायद हैं बल्कि आलम आखरत में भी सूरह आले इमरान का इस तरह का साथ चलता रहेगा। तो इस लिहाज से सूरह आले इमरान के अंदर एक और भी खसूसियत है कि ये जहानत और हाफिजे में बहुत इजाफा कर, इसकी कुछ आयात ऐसी हैं वो जहानत में और हाफिजे में बहुत जबरदस्त इजाफा करती है। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई इंसान के पास अकल तो होती है तो ये क्या अकल में भी इजाफा मुमकिन है? तो जवाब है कि जी हाँ, अकल में भी इजाफा मुमकिन है, अकल में कमी भी मुमकिन है। कुछ ऐसे अमाल हैं जो अकल में इजाफा करते हैं, कुछ ऐसे अमाल हैं जो अकल में कमी का बाइस बनते हैं। इसी तरीके से जहानत में भी इजाफा हो सकता है, जहानत में भी कमी वाक़ हो सकती है। तो सूरह आले इमरान की आयात जो है 6-8 यानी 6-7-8 इसके मुताल्लिक उलमा ने लिखा है जो खासतौर पर अमलियात के माहिरीन हैं। अच्छा देखिए, जो जो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं तो अक्सर लोग फौरन कहते हैं भाई ये क्या कि मसलन जैसे सूरह आले इमरान के लिए कि इसकी आयात जो है 6-8 इनको एक सब्ज कागज पर लिखा जाए और ज़ाफरान से और गुलाब से तहरीर किया जाए, तो फौरन दिमाग में आता है भाई सब्ज कागज क्यों, सफ़ेद कागज क्यों नहीं हो सकता और ज़ाफरान ही क्यों, उससे वो क्यों नहीं हो सकता? तो अब इसमें जो भी चीज़ आप लेकर आएंगे तो उसका भी सवाल होगा कि उसी से क्यों और किसी और से क्यों नहीं। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़ाहिर है इसके जो माहिर लोग होते हैं वही इसके मुतालिक इसकी असर पजीदी जिसमें ज्यादा है, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी इसमें लगाई हैं, वो उलमा इन चीजों को बयान करते हैं। तो सूरह आले इमरान की 6, 7, और 8 आयत ये अगर सब्ज कागज पे लिखी जाए ज़ाफरान से और गुलाब से इसको तहरीर किया जाए, गुलाब का पानी या अर्क उसमें मिलाया जा सकता है और ज़ाफरान को मिलाकर बाकायदा एक जो फाउंटेन पेन कहलाता है उसमें अंदर भर के उससे लिखा जा सकता है। अच्छा, जब इसको लिख लिया जाए इस तहरीर को तो फिर उलमा फरमाते हैं कि आबे जारी से उसको धोया जाए और धोकर उसका पानी 7 दिन तक पिया जाए। 7 दिन तक। अच्छा, 7 दिन तक किस वक्त में पिया जाए? तुलुए आफ्ताब के वक्त पिया जाए और निहार में पिया जाए, यानी उससे पहले कोई चीज खाए पी ना हो। और फिर उलमा फरमाते हैं इन 7 दिनों में अगर कोशिश करें कि गोश्त की कोई चीज ना खाई जाए तो उसके जहानत में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा और हाफिजा भी बेनतहा कवी हो जाएगा। वालदेन अपनी औलादों के कोई अमल करवा सकते हैं, जाहिर बच्चे खुद तो इस तरह से नहीं करेंगे लेकिन ऐसा इंतजाम किया जा सकता है, और इतना ज्यादा बड़ा भी अमल नहीं है, सिर्फ 7 दिन के लिहाज से यानी दोबारा मैं इसको दोहरा देता हूँ कि सूरह आले इमरान की छठी, सातवीं और आठवीं आयत सब्ज कागज पे लिखी जाए, जाफरान और गुलाब से तहरीर की जाए, फिर उसके बाद आबे जारी से उसको धोकर उसका पानी 7 दिन तक तुलू आफ्ताब के वक्त निहार मुंह पीना है और 7 दिनों में कोई गोश्त नहीं खाना है। तो उलमा ने लिखा है कि जहानत में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा और हाफिजा भी बेपनाह कवी हो जाएगा। और जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि वालिदैन ही इसको कर लें और अगर औलाद इतनी समझदार है तो खुद इस अमल को कर ले। तो और कोशिश ये भी करनी चाहिए, देखिए हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि बहुत छोटे छोटे जो सूरा हैं, बहुत कम कम आयत के, 5-10 आयतों के, वो तो हम अपने बच्चों को हिफ्ज कराते हैं, लेकिन बच्चों में कैपेसिटी इससे बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर कोशिश की जाए तो जरा बड़े सूरे भी हिफ्ज किए जा सकते हैं। उसने 200 आयत का तो ये सूरा सूरह आले इमरान बच्चों को हिफ्ज कराई जा सकती है। और बल्कि बाज़ औक़ात तो ये अगर से अभी हमारा मौजू उस लिहाज से नहीं है, तरबियत औलाद में भी हमने इसको डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें बच्चों को बतौर सज़ा भी दी जा सकती हैं। अच्छा, ये जो आपके हेडिंग सामने आ रही है सूरह आले इमरान की हिफ्ज की सज़ा, लोग कहेंगे भाई कौन सी सज़ा है। देखिए बास सजाएं जो आमतौर पर दी जाती, जिस्मानी सजा, मसलन कान मरोड़े जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ये तो जिस्मानी सजाएं। लेकिन बाज़ोकत ये भी तो हो सकता है ना कि मसलन बच्चे हैं, उनको कोई कोई शरारत, शरारत पे तो खैर इतना नहीं, मसलन कोई बहुत बदतमीजी या कोई ऐसी चीज जिस पे सजा देनी जरूरी हो, तो आप उससे कोई भी चीज उसकी पसंदीदा उससे उससे दूर कर सकते हैं कि ये चीज तो आपको उस वक्त मिलेगी जब मसलन आप मुझे जो है ना ये फला सूरा जो हिफ्ज करके सुनाओगे तो इस चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें उस वक्त फला जगह पे लेकर जाएंगे पिकनिक पे साथ या कोई भी ऐसी चीज अचीवमेंट जब तुम ये फला चीज करके सुनाओगे। तो बज़ाहिर तो ये सजा लग रही है लेकिन असलन ये उसके ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान हो रहा है बच्चे के ऊपर, उसको वो चीजें याद हो रही हैं। तो कि तुम्हें माफी इस काम की उस वक्त मिलेगी जब फला सूरा याद करके आओगे। अभी कुछ ही अरसे पहले शुमाली लबनान की एक अदालत ने 4 नौजवानों को जिन्होंने ईसाई मजहब की तौहीन की थी, अदालत में बाकायदा मुकदमा चला, बहरहाल साबित हो गया कि इन्होंने ईसाई मजहब की तौहीन की। आपको पता है कि लबनान में ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़े इस तरह से हैं और एक मुश्तरका किस्म की गवर्नमेंट भी बनती है और वहाँ अदालतों के जजेस भी जो हैं वो हर फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तो ईसाई खातून जज, जिसको तस्वीर को हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है इस वजह से कि वो बेहिजाबी वाली तस्वीर थी, तो ईसाई खातून जो जज थी उनके पास ये मुकदमा गया। तो उन्होंने एक सजा सुनाई कि इन चारों लड़कों को कहा कि ये सूरह आले इमरान जो है हिफ्ज करके सुनाएंगे तो इनकी इनको इन पर से सजा माफ होगी। अच्छा, हर कोई इस फैसले पर बड़ा हैरान हुआ, वो नौजवान खुद ये फैसला सुनकर हैरान और शजदा रह गए और फिर ये तय पाया कि फला मुकर्रा तारीख से उनको एक डेडलाइन दी गई कि उस वक्त तक इनको हिफ्ज करके सूरह आले इमरान सुनानी। तो जब जिस वक्त ये अदालत में ये नौजवान आए तो लोग बड़े देखकर हैरान और वो हुए इनको कि तीनों जो हैं उन्होंने सूरह आले इमरान, चारों जो थे उन्होंने सूरह आले इमरान जो है वो जुबानी याद की हुई थी। अच्छा, सबके हाथों में कुरान थे और जिस वक्त वो इसको सुनाने वाले थे तो उससे पहले बार बार कुरान खोलकर सूरह को रिवाइज कर रहे थे। तो बहरहाल तमाम लोगों ने इस फैसले को बड़ा अप्रिशिएट किया और इस फैसले को एक मजहबी रवादारी के फरोग वाला फैसला करार दिया। जो लबनान के वजीर आजम भी थे साद अल हरीरी, उन्होंने भी इस फैसले को जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया कि इससे मजहबी रवादारी को बड़ा फरोग मिलेगा। तो इसमें बहरहाल ये तो वाकया तो एक इस जमीन में था लेकिन असल बात बयान करने वाली ये थी कि सूरह आले इमरान को हिफ्ज भी किया जा सकता है, बच्चों को हिफ्ज कराया जा सकता है, उन्हें किसी इंसेंटिव दे के, कोई चल लफ्ज तो इतना अच्छा नहीं है चले लेकिन नेकी की वैसे कोई लालच दे के कि भाई अगर आपको फला चीज चाहिए, कोई फरमाइश कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप कह दें ठीक है आपकी फरमाइश पूरी होगी लेकिन आप मुझे ये वाला सूरह हिफ्ज करके दे दें, 1 महीने 2 महीने का टाइम दे दें उसको, कोई अच्छा बड़ी अचीवमेंट कोई उसको या कोई ऐसा गिफ्ट या तोहफा या कोई चीज दिलानी है जो उसकी फरमाइश है। तो इस तरह की चीजों को भी तरबियत में शामिल करना चाहिए, ना कि उसने मुंह से जो निकाल दिया आपने फौरन पूरा कर दिया, उसकी निगाह में भी उस चीज की कोई अहमियत नहीं होती जो बगैर किसी एफर्ट के ऐसे ही हासिल हो जाती। तो उसमें आइंदा के लिए भी उसका एक आपने यानी तरबियत का कैसा अंदाज अख्तियार किया कि बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और उसकी दीनी तरबियत भी हो गई। अच्छा, इसी तरह से इसमें एक बहुत मशहूर आयत है, आयत शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत नंबर 18 है सूरह आले इमरान की। लेकिन जो आयत शहीद अल्लाह, ये कहा जाता है कि इसका दो आयात पर इतलाक होता है, एक तो ये आयत नंबर 18 पर सूरह आले इमरान की और एक आयत नंबर 19 पर भी, यानी आयत 18 और आयत 19 सरीउल हिसाब तक आयत 19 खत्म होती। तो ये दो आयात यानी ऐसी मारकतुल आरा जिसे कहा जाए या इतनी अजीम शान ये दो आयात हैं, और जैसे कि अभी आप सुनेंगे भी इनके फजाइल, इनकी शान नजूल में भी ये बात बयान की जाती है जो आयत 18 है और आयत 19 भी उलमा इसमें शामिल करते हैं कि यहूदियों के दो बड़े आलिम एक मरतबा शाम से मदीने आए। तो मदीने की जब उन्होंने हालत देखी आकर कहा कि तो हम बिल्कुल वैसी ही हमें बस्ती लगती है जिस तरीके से हमने तौरात वगैरह में पेश गोई सुनी है कि आखिरी नबी आएगा और जो उसकी निशानियां बयान की गई। तो लोगों से जब इनको मालूम चला, इत्तला मिली कि यहाँ तो खुद ही एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है जो खुद को अल्लाह का नबी कहती, ये उसी जमाने में वहां पर आए थे दोनों यहूदी आलिम, इन्होंने कहा चलो चल के मुलाकात करते हैं। खिदमत अकदस से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए तो देखा कि वो तमाम सिफात इस मुकद्दस हस्ती में मौजूद हैं जो कि उससे पहले की जो आसमानी कुतुब और मुकद्दस किताबों के अंदर जिस हालत में भी उनके पास वो किताबें थी उसमें जो आखिरी नबी की अलामत बयान की गई। तो उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से कि क्या आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पैगम्बर अकरम ने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद और अहमद हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक सवाल का हमें जवाब दे दें तो हम ईमान ले आएंगे आप पर। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। कहा कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत और गवाही किस चीज से मुतल्लिक ये बताइए। जिब्रील अमीन उसी वक्त आले इमरान की आयत नंबर 18 शहीद अल्लाह ये आयत लेकर नाजिल हुई और पैगंबर अकरम ने ये आयत शहीद अल्लाह जो है वो उन यहूदी आलिमों को सुना दी। सुनते ही वो दोनों उसी वक्त ईमान ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसका आयत शहीद अल्लाह का शान नजूल इस लिहाज से बयान किया जाता है। और पैगंबर इस्लाम आयत शहीद अल्लाह की मैदान अराफात में भी तिलावत फरमाते थे। जो रिवायत मिलती है कि मैदान अरफात में भी तिलावत फरमाई इसकी इस आयत की, और हर नमाज के बाद भी आयत शहीद अल्लाह को पढ़ना जो है बहुत सवाब रखता हर नमाज के बाद। तफसीर रूहुल मानी में भी एक रिवायत है हजरत अबू अय्यूब अंसारी से कि पैगंबर इस्लाम ने यह बात इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स भी नमाज के बाद सूरह फातिहा आयत अल कुर्सी आयत सूरह आले इमरान की आयत 18 ये शहीद अल्लाह और 19वीं में चले इसमें शामिल कर लें, इसके अलावा आयत नंबर 26 सूरह आले इमरान की वो तो इज्जो मन तशा हो तो जिल्लो मन तशा हो जिसमें आता है, अगर कोई शख्स ये तिलावत कर ले यानी सूरह फातिहा आयत अल कुर्सी आले इमरान की आयत 18-19 और आयत नंबर 26 तो उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 70 हाजात उसकी पूरी की जाती हैं जिसमें से कम तरीन हाजत जो है वो मगफिरत की हाजत है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाए। कम तरीन हाजत सारे गुनाह माफ, तो सोचिए इससे बढ़कर जो बाकी 69 हाजात और होंगी क्या कुछ जो कि उससे कहीं ज्यादा वो भी सब कबूल हो जाती है उसके। तो हर नमाज के बाद इसको पढ़ने की इतनी ताकीद है। इंशाल्लाह जब हम एक शायद एक इस मौजू पर एक अलग गुफ्तगू रखें कि हर नमाज के बाद दुआएं तो सबको पता है तस्बीहात भी पता है लेकिन कौन कौन सी आयतें कुरानी ताकीबात में पढ़ना सवाब रखता जिसकी ताकीद आई कि हर नमाजों के बाद इन आयतें कुरानी की तिलावत की जाए, उसका एक पैकेज है उन आयात का और बहुत ज्यादा भी नहीं है दस बारह पंद्रह के करीब, उससे ज्यादा आयत नहीं होंगी वो, लेकिन वो हर नमाज के बाद उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद आई। तो उसके अंदर आयत शहीद अल्लाह होगी, आयत नंबर 18 जो सूरह आले इमरान की, वो इंशाल्लाह अपनी उसमें हम बयान करते रहेंगे। तो हर नमाज के बाद भी इसको पढ़ा जाए। अच्छा, फिर इसके अंदर वो उलुल इल्म कायम बिल किस्त, यानी वो साहिबान ईमान जो के अदालत पर कायम, इंसाफ पर कायम, उनकी जो तारीफ बयान हुई, यानी वो तौहीद पर उन अहले इल्म की गवाही जो के अदालत पर कायम, इनसे मुराद कौन है? उलुल इल्म कायम बिल किस्त कौन है, कौन? तो तफसीर अय्याशी में भी ये रिवायत है कि इससे मुराद मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दीगर और जो रिवायत हैं उसमें दीगर मासूमीन को भी इससे मुराद लिया गया है, यानी इमाम ने खुद फरमाया है कि नहनु उलुल इल्म कायमम बिल किस्त, यानी वो उलुल इल्म जिसका कुरान में तस्करा आया वो हम है। तो अभी आपने सुना कि आयत शहीद अल्लाह जो है इसकी, इसको नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, ताकीबात नमाज में पढ़ना चाहिए। ये वजह है कि उरवतुल उस्का जो हमारी किताब है फिक्र की, और तकरीबन तमाम उलमा इस पे हाशिए भी लगाते हैं, उसमें ताकीबात नमाज में आयत शहीद अल्लाह को पढ़ने का इस्तेहबाब भी बयान हुआ। तो इंशाल्लाह जैसे कि हमने कहा कि वो बहुत सी आयात आयात पुरानी कि जिनको ताकीबात नमाज में पढ़ने का हुक्म है, ये हम अलग से एक उनवान के तौर पर किसी दर्स में जिक्र करेंगे। अच्छा, सोते वक्त आयत शहीद अल्लाह की तिलावत का भी बहुत सवाब है। तफसीर मजमूल बयान में अल्लामा तबरसी ने पैगम्बर अकरम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि जो भी इस आयत को, आयत शहीद अल्लाह को सोते वक्त तिलावत करेगा तो खुदा 70,000 फरिश्ते खल्क करेगा जो कयामत तक उसके लिए तलब मगफरत करते रहे। यानी सिर्फ इतनी मुख्तसर सी आयत जो चंद सेकंड्स के अंदर पढ़ी जाती है, पैगंबर फरमाते हैं सोते वक्त अगर किसी ने इसकी तिलावत की 70,000 फरिश्ते खल्क होंगे जो कयामत तक मुसलसल उसके लिए तलब मगफरत करते रहे। क्या अजमत है, और कितनी आसानी के साथ परवरदिगार ने हमारी मगफरत को करार दे दिया है कि सिर्फ सोने से पहले इसको तिलावत करना है, 70,000 फरिश्ते मुसलसल इसके लिए तलब मगफरत कयामत तक करते रहे। अच्छा, ये तो फकत, यानी अगर आप सिर्फ आयत ये आले इमरान की आयत 18 की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस हद तक है, लेकिन अगर दीगर आयात के साथ सोते वक्त मिला लिया जाए इस आयत शहीद अल्लाह हो, तो फिर अजर सवाब क्या बढ़ जाएगा? वो इतना हो जाएगा कि बहरुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की कि जो शख्स भी सोते वक्त 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और ये आयत शहीद अल्लाह पढ़े, अच्छा, और आयत सखरा और आयत सिजदा। अच्छा, आयत सखरा कौन सी है? सूरह आराफ की 54वीं आयत, 54। और वैसे तो आयत 54 है, लेकिन हमारे कुछ उलमा जैसे शेख बहाई या आयतुल्ला हसन जादे आमिली, वो फरमाते हैं कि ये जो आयत सखरा है, सर, यानी सूरह आराफ की 54वीं के साथ 55वीं और 56वीं आयत भी मिला ली, यानी 54, 55 और 56, ये 3 आयत, ये आयत सखरा कहलाती हैं। और बड़ी अजमत इनकी अलग से है, जो कभी अपने मुकाम पर जब भी सूरह आराफ हम बयान करेंगे उस वक्त इसका जिक्र आएगा। और कुछ जो अमलियात की किताब है उसमें आयत नंबर 57 को भी आयत सखरा में शामिल किया गया। तो चलें, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, आयत 54 से लेकर 57 तक अगर ये पढ़ ली जाए, इन्ना रब्बकुम अल्लाहुल्लज़ी से जो शुरू होती आयत और मोहसिनीन तक जाती, तो परवरदिगार आलम शर्र शैतान से उसकी हिफाजत करेगा और 30 फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो हम्द कर बजा लाते रहेंगे, तस्बीह करते रहेंगे, तकबीर बजा लाएंगे, तहलील बजा लाएंगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी मगफिरत की दुआ करते रहेंगे यहाँ तक कि वो नींद से बेदार हो जाए, और उसका तमाम का सवाब उसके नामे अमल में दर्ज किया जाए। तो सोते वक्त आयत शहीद अल्लाह को किन के साथ मिलाना है? आपने छठे इमाम की रिवायत के मुताबिक 3 दफा आयतल कुर्सी, एक दफा आयत शाहिद अल्लाह और आयत सखरा और आयत सजदा, तो इतना जबरदस्त इसका एक जो है वो सवाब आपको मिलेगा। और आयत सखरा में हमने बताया कि 54 से लेकर 57 तक उन आयत को पढ़ लिया जाए। अच्छा, सख्त तरीन हालात में भी आयत शहीद अल्लाह से मदद ली जा सकती। जंग सफ़ैन या सिफ़ीन जिसको कहा जाता है, इसमें जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुश्मन के ताकुब में थे और बिल्कुल अकबे दुश्मन तक पहुंच गए थे, तो असहाब ने देखा कि हजरत अमीर कुछ जिक्र अस्कार कुछ तिलावत कर रहे हैं। हजरत अम्मार यासिर ने पूछा, कहा कि मौला ये आप क्या तिलावत कर रहे हैं? इमाम ने कहा कि इसमें आजम और सुतून तौहीद जो है वो ला इलाहा इल्ला हुआ है। और उसके बाद हजरत अमीर ने आयत शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ ये पढ़ी और सूरह हशर की आखिरी आयत तिलावत की, बिहारुल अनवार की जो 93 जिल्द 93 उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी जब सख्त तरीन हालात थे उस मौके के ऊपर हजरत अमीर ने फरमाया कि इसमें आजम और जो सुतून तौहीद है वो ला इलाहा इल्ला हुआ में। और ये जो जुमला है आयत शहीद अल्लाह के अंदर भी इसकी गवाही है। तो इसके साथ सूरह हशर की आखिरी आया, तो ये सख्त तरीन कभी हालात इंसान के पेश आ जाएं तो उसमें वो आयत शहीद अल्लाह जो 18वीं और 19वीं आयत है सूरह आले इमरान की, इससे भी मदद ले सकता। और मरते वक्त भी इस आयत का बहुत फायदा है सूरह आले इमरान की। कशफुल इसरार की जो दूसरी जिल्द है उसमें एक हिकायत बयान की गई, और ये वाली जो हिकायत है ये खबर गुजारी हौजा जो एक हौजा इल्मे कुम की खबर रसानी की जो एक वेबसाइट है उसके अंदर भी ये हिकायत जो है वो आपको मिलेगी, वरना कशफुल इसरार किताब की दूसरी जिल्द में है। और जो वेबसाइट है खबर गुजारी हौजा उसमें फ़ालियत आयत बुजुर्ग तरीन के नाम से इसकी हिकायत लिखी हुई। तो बड़ी अजीब गरीब है ये कि एक शख्स था कि जो कि इन आयत शाहिद अल्लाह हुई जो सूरह आले इमरान की 18वीं और 19वीं आयत की बहुत ज्यादा तिलावत करता था, बहुत ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा तिलावत, बहुत से लोग होते हैं इतना क्लिक कर जाता है उनको कि हर वक्त फिर उन आयत की या उन सूरों की तिलावत करते रहते हैं सारी जिंदगी। और वो एक बात कहता था परवरदिगार मैं ये तेरे पास अमानत रखवा रहा हूं, जिस वक्त मुझे इसकी जरूरत हो मुझे इसको लौटा देना। अच्छा देखिए, एक चीज और भी है, जब आप ज्यारत पे जाते हैं मुकामात मुकद्दसा की ज्यारत पर, तो वहां पर अरबी में बहुत सारी दुआएं वगैरह भी पढ़ाई जाती हैं, तो उन ज्यारत की अक्सर जगहों पर वहां अपने अकायद का इजहार किया जाता है और उसमें भी ये वाले जुमले आते हैं कि परवरदिगार मैं अपने इन अकायद का जो इजहार कर रहा हूँ ये मैं तेरे पास अमानतन रखवा रहा हूँ, अमानतन। तो जिस वक्त मुझे जरूरत हो, जाहिर जिस वक्त इंसान मरता है तो उस वक्त उन अकायद हक्का का जबान से इजहार करना भी मुस्तहब। और कुछ पुराने उलमा हमारे थे वो तो कहते थे कि अल्लाह पर अपने हुस्न जन का इजहार करना भी वाजिब है। तो इंसान जब उसका आखिरी वक्त करीब आए तो अपने अकायद हक्का का लोगों के सामने इजहार करे। तो फिर वो कसरत से इसको पढ़ता था आयत शहीद अल्लाह को। जिस वक्त उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, खुद बखुद उसकी जुबान पर आयत शहीद अल्लाह जारी हो गई और वो इन्हीं आयात की तिलावत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसी वक्त यानी लोग जो वहां पर मौजूद थे उसके पास, उन्होंने हातिफ गैबी की एक सदा सुनी और वो सदा ये थी कि जो अमानत तुमने रखवाई थी आज हमने तुमको लौटा दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो आज हमने तुमको लौटा दी। तो इन आयात की मुसलसल तिलावत अगर हर नमाज के बाद है तो वैसी जुबानी भी तौर पर आपको याद हो जाएंगी। दो तो छोटी सी आयतें हैं 18वीं और 19वीं, हर नमाज के बाद हो गई तो याद हो जाएगी। और इसकी जब भी याद आए इसकी तिलावत करते रहें और ये बात कहें परवरदिगार वक्त आखिर ये मैं तेरे पास अमानतन रखवा रहा हूँ, वक्त आखिर जब मेरा आए तो जब मुझे इनकी हाजत हो तो मुझे लौटा देना, जैसे कि आपने इस हिकायत में भी ये बात सुनी। तो बड़े इन चीजों के फायदे हैं इन आयात के, और इस सूरह आले इमरान की आयत 18 और 19। अच्छा, उलमा फरमाते हैं एक बड़ी अजीब बात इसमें ये है कि आयते शहीद अल्लाह ने खुद अपनी तौहीद की गवाही दी, अपनी वहदानियत की गवाही दी। वरना देखिए, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन यहाँ क्या है, शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह खुद गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बाकी गवाही हम खुद देते हैं, यहाँ अल्लाह खुद गवाही दे रहा है। बल्कि उलमा एक चीज और भी फरमाते हैं कि आयत शहीद अल्लाह से मौला अली के हक फिदक पर गवाही का इस्बात भी होता है। यानी इसमें क्या है, वो अहले इल्म जो अदल पर कायम, यानी जिससे अभी हमने इससे मुराद मिज़दाक करार दिया था कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ाते गिरामी है, यानी उनकी गवाही ठुकरा दी गई फदक के सिलसिले में। यानी जब मौला अली की तौहीद के सिलसिले में अल्लाह की वहदानियत के गवाह वो बन सकते हैं, जिससे बढ़कर कोई और गवाही नहीं, तो फदक के गवाह के तौर पर उनको क्यों नहीं माना गया। यानी हैरत है कि तौहीद के मामले के लिए तो अली की गवाही को माना जाए, और थोड़ी सी जायदाद के लिए अली की गवाही को ठुकरा दिया जाए। अली तो रिसालत के भी गवाह है। वो जो सूरह रात की जो आखिरी आयात है कि कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मिन इंदहु उम्मुल किताब, यानी रसूल अल्लाह को खिताब है कि कह दो कि रसूल के मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है, और वो काफी है जिसके पास किताब खुदा का इल्म है। तो तफासिर में कि मिन अंदहु उम्मुल किताब से मुराद हजरत अमीर की ज़ाते गिरामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो मौला अली तौहीद के गवाह बन रहे हैं, रिसालत के गवाह बन रहे हैं, वहां उनकी गवाही तस्लीम की जा रही है, लेकिन फदक के मामूली सी जायदाद के किस्से में के मसले में उनकी गवाही को झुटला दिया जाए और ठुकरा दिया जाए। तो ये बड़ी हैरत अंगेज बातें हैं सारी जो तारीख इस्लाम के अंदर हम पढ़ते हैं कि हजरत अमीर की गवाही को किस तरह से झुटलाया गया। अच्छा, हुई हुई चीजों के सिलसिले में भी सूरह आले इमरान की आयात, एक आयत ऐसी है मसलन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7, वो आप खुद देख लीजिएगा, 7वीं आयत है, गुमशुदा चीज पर के लिए पढ़े या मसलन गुमशुदा इंसान के लिए पढ़े, और उस आयत को पढ़कर उसकी वापसी की दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसको वापस लौटा देगा। कोई चीज गुम जाए या इंसान गुम जाए, मिसिंग पर्सन हमारे कितने नौजवान गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है, तो आले इमरान की आयत नंबर 7 को इस नियत से कि फला इंसान मिल जाए या फला चीज मिल जाए, ये इस काम के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 उलमा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा शक को वसवास की बीमारी किसी को हो जाए, लोग कितना परेशान है, हर वक्त हाथों को धोए चले जा रहे हैं, अब तो खैर ये भी वसवास की हद तक बहुत सारी चीजें कोविड वगैरह में भी हो गई हैं, कि अकेले घर में भी आदमी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना किसी से मिल रहा है ना कुछ, कहीं हाथ लग रहे हैं तब भी हाथों को धोए चले जा रहा है। खैर, आयाते जो आले इमरान है इसमें 16 था 18 वसवास और शक की बीमारी के लिए, यानी अगर 16, 17 और 18वीं आयत, इसमें भी जो रूहानियत और इसके जो उलूम के माहिरीन है वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा वसवास में मुबतला रहता है, शक व शुबहात में मुबतला रहता है, मुमकिन है निजासत और तहारत के शक होते हों, वसवास आते हों, मुमकिन है अकायद के सिलसिले में आते हों, तो वो सफेद शकर पर पढ़कर, चीनी जो मीठी चीज होती है, सफेद शकर 16 था 18वीं आयत शकर सफेद शकर पर पड़े, और उसमें उसको हल करें आबे शबनम से, आबे शबनम से हल करें, और 4 रोज तक एक मिसकाल इंजीर के साथ मिलाकर खाए, यानी टोटल जो ये बनेगा एक मिसकाल, तो वो आप हकीमों वगैरह से भी पूछ सकते हैं जाकर कितना बनेगा, तो इंजीर के साथ मिलाकर खाना है 4 रोज तक। तो वो कहते हैं कि शको वसवसे की जो बीमारी और अफकार फासेदा जो होते हैं, उल्टे सीधे अकायद और ये जो उसके दिमाग में आते हैं, ये सब ये वसवास शक की बीमारी उससे दूर हो जाएगी। यानी आले इमरान की आयत नंबर 16 था 18 सफेद शकर पर पढ़कर पढ़ना है उसको, और आबे शबनम उसमें हल करना है, 4 रोज तक इंजीर के साथ एक मिसकाल खाना। अच्छा, इसी तरह से कहा जाता है कि बेपनाह अगर किसी पर कर्ज है, लोग आजकल बहुत ज्यादा कोविड के बाद की सूरत हाल में कर्जों वगैरह में मुबतला हुए, आयत आले इमरान की 26वीं और 27वीं आयत पढ़े, 26th और 27th ये पढ़े, और उसके बाद सिर्फ एक जुमला कहे या रहमानु दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तूती मन तशाओ मिनहुमा मन तशाओ फग़ज़ अन्नद्दैन। ये एक एक छोटा सा जुमला है, ये पढ़ना है। तो उलमा फरमाते हैं कि इस कदर भी कर्ज हो कि जो जमीन और आसमान में ना आ सके, तब भी अल्लाह उसके कर्ज को अदा कर देगा। बेपनाह कर्जों में इंसान अगर कोई जकड़ गया है कि जमीन और आसमान में इतना ज्यादा कर्ज उस पर हो गया है जो उसके दरमियान में भी ना आ सके, तो भी अल्लाह उसके कर्जे को अदा कर देगा। तो ये उस लिहाज से बहुत अहम है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि वाकईतन ये जो आयत शहीद अल्लाह है जिसके अभी इससे पहले जिक्र हो रहा था, इस कदर अजीब है आयत 18 और 19 खासतौर पर, अगर इसकी मुसलसल तिलावत इंसान करता रहे तो वो इरफानियात की मनाजिल तय करता चला जाएगा, अल्लाह की तरफ बुलंद होता चला जाएगा। और सूरह आले इमरान और सूरह बकरा के एतबार से हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत दो कुरानी जो सूरा हैं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, ये उसके पढ़ने वाले पर बादल की तरह से साया फिगर रहेंगे, बादल की तरह से। और अब आपने देखा कि किस कदर ये अजीम सूरा है सूरह आले इमरान, किस कदर अजमत का हामिल है, इसकी आयात किस कदर अजमत और फजीलत की हामिल हैं, कितने मसाइल और मुश्किलात का हल इसके अंदर है। तो हाल बता इतना और जरूर है कि बाज़ोकात ये चीज़ देखने में आती है, लोग समझते हैं बस इन अमलियात को चिराग को रगड़कर जिन की तरह से हाजिर करके अपनी हाजात को पूरा करवाने के तरीकों के ऊपर लग जाते हैं। उसके साथ साथ अमले सवाले बहुत ज़रूरी है, गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी होता है, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना बहुत ज़रूरी होता है। घर में अगर कोई शख्स बुरा सलूक कर रहा हो, लोगों पर जुल्म कर रहा हो और परेशान लोगों को कर रहा हो, सता रहा हो, तकलीफें दे रहा हो, फिर वो इन अमलियात को करेगा तो उसका कोई अमलियात का फायदा नसीब नहीं होगा। पाकीज़ा नफ्स और पाकीज़ा तबीयत के साथ इन अमलियात को करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और मुकम्मल एतिकाद के साथ करेंगे तो और फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारी इस गुफ्तगू का आज इख्तिताम होता है सूरह आले इमरान और उसकी जो मखसूस आयात हैं, उनकी कितनी फजीलत हैं, उनके अमलियात कौन से हैं, हम अपनी दुनिया और आखिरत की कितनी मुश्किलात को इसके जरिए हल कर सकते हैं, ये आज आपने सुना। इंशाअल्लाह तरतीब के एतबार से जो चौथे नंबर का सूरा होगा वो अगली दफ़ा उसके फजाइल व बरकात और तारुफ उसका बयान किया जाएगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।